आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए गढ़वाल व टिहरी सीट से भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कांग्रेस ने भी टिहरी सीट से नामांकन पत्र भरकर दावेदारी पेश की। हरिद्वार लोकसभा सीट से भावना पांडे के बसपा छोड़ने के बाद पार्टी ने मौलाना जमील अहमद काजमी को प्रत्याशी घोषित किया। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है और केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए आज टिहरी सीट से भाजपा और कांग्रेस व गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन भरा। टिहरी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह ने आज देहरादून में अपना नामांकन दर्ज किया है। इससे पहले उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के लिए रोड शो भी किया। वहीं टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के ज्योत सिंह गुनसोला ने भी कांग्रेस समर्थकों की उपस्थिति में अपना नामांकन भरा। उधर गढ़वाल सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता स्मृति ईरानी सहित अन्य भाजपा नेता और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं हरिद्वार संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने डिजिटल माध्यम से 23 मार्च को ऑनलाइन नामांकन किया था, जिसके बाद आज उन्होंने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया है। कल नामांकन की अंतिम तिथि है, ऐसे में शेष उम्मीदवार कल ही अपना नामांकन दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद जनसभाएं की है। पौड़ी गढ़वाल में आयोजित जनसभा में गढ़वाल सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल बलूनी ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे।
आपके इस पसीने का ऋण मैं कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस गढ़वाल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मतदाता हैं, जो हमारे नागरिक हैं, इनके लिए जो भी मेरे जीवन में जितनी मेरी यथाशक्ति है उनके लिए किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ जन कल्याण के कामों के लिए करूंगा।
भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण स्वीकार न करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला।
जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया? इस प्रश्न का उत्तर दे दो। देवभूमि पर कांग्रेस के उस नेता के लिए, कांग्रेस की उस विचारधारा के लिए एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है? इस भूमि पर क्या एक भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा जिन्होंने धारा 370 का हटाने का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत की संसद में भारत के संविधान को चुनौती दी और भारत की सेना से साक्ष्य मांगा कि बताओ पाकिस्तान में जाकर तुमने दुश्मन को किस तरह से खदेड़ा?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस दौरान अनिल बलूनी के समर्थन में क्षेत्रीय जनता से मतदान की अपील की। उधर टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत सिंह गुनसोला ने कहा कि टिहरी लोकसभा सीट से उनको अपार जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने टिहरी सीट पर चुनाव को राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई बताई है।
नॉमिनेशन मैंने कर दिया, अब जनता के बीच में जाने की बारी है और जनता के बीच में जनता के सवालों से जुड़ने की बारी है, क्योंकि जनता ये मान चुकी है, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, ये मान चुका है कि टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन की लहर पूरे देश में जाएगी। स्थानीय मुद्दे हैं, जल जंगल और जमीन का सवाल है, भूमि कानून के को इतना वो बना दिया गया है जिसमें परिवर्तन की जरूरत है, जंगलों का दोहन इस तरह से किया जाए, वैज्ञानिक दोहन किया जाए, न कि किसी एक को देकर जो है वो दोहन किया जाए। तो इस तरह के तमाम लोकल मुद्दे हैं, प्लान का मुद्दा है, टिहरी लेक का मुद्दा है, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात की जाएगी और सदन के अंदर भी करने की जरूरत पड़ेगी तो सदन के अंदर भी करेंगे और सड़क पर लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी।
हरिद्वार लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार भावना पांडे ने चुनावी मैदान छोड़ दिया है। उनके चुनाव में हिस्सा न लेने के बाद बसपा हरिद्वार सीट से नई रणनीति बनाई है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल ने बताया कि अब हरिद्वार लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके मौलाना जमील अहमद कासमी उनके पार्टी उम्मीदवार होंगे। उधर भावना पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में बसपा पार्टी जमीनी स्तर पर कमजोर है और इस कारण से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगी और भाजपा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना समर्थन देंगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में लोकसभा चुनाव में इस बार जिला निर्वाचन विभाग ने सभी 362 पोलिंग बूथों पर 70% मतदान का लक्ष्य रखा है। साथ ही वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन 39 पोलिंग बूथों पर 50% से भी कम वोट पड़े थे वहां ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। उधर स्वीप दल भी जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चला रहा है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज कुमार ने बताया कि सूचना यंत्र में अलग अलग माध्यमों से भी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। मतदान केंद्रों तक जनता की पहुंच आसान बनाने के लिए राज्य में कुल 11,729 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के 12 दुर्गम मतदान केंद्रों के लिए मतदान तिथि से 3 दिन पहले ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए 83 लाख से ज्यादा मतदाता लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। इस बार 1,45,000 युवा मतदाता भी पहली बार चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं अभी तक 5 लोकसभा सीटों से चुनाव में भागीदारी करने के लिए विभिन्न पार्टियों सहित 19 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन नहीं करवाए। कल नामांकन समाप्त होने के बाद चुनाव के लिए कुल उम्मीदवारों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी। इसके बाद 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 30 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केंद्र के पूर्व अनुमान के अनुसार जुलाई से सितंबर तक जब मानसून चरम पर होगा तब भारत में औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इसमें अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर के लिए 2 अलग अलग आंकलन किए गए हैं। इस बीच प्रदेश में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा। हालांकि मौसम विभाग ने गुरुवार से शनिवार तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों में मौसम साफ होने के साथ ही अब तेजी आई है। धाम में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है। इस साल दूसरे चरण में निर्माणाधीन कार्य पूरे किए जाने हैं। पुनर्निर्माण कार्यों की प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी बताया कि कार्यदायी संस्था हर दिन निर्माण प्रगति की रिपोर्ट प्रशासन को उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरे चरण में यात्रा नियंत्रण आदेश केंद्र, अस्पताल, पुलिस थाना, प्रशासनिक भवन, यात्री सुविधा, चिकित्सा केंद्र, मंदाकिनी नदी किनारे आस्था पथ पर दुकानों का निर्माण, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के आवास, धर्मशाला आदि पर काम किया जा रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा कर रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप इस साल 17 निर्माण कार्य पूरे किए जाएंगे। आज चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ है। 1970 के दशक में वनों की कटाई को रोकने के लिए चमोली जिले से शुरू हुआ यह आंदोलन अहिंसक और प्रभावी आंदोलन में से एक था। इस आंदोलन को देशभर में मशहूर करने वाली घटना 26 मार्च 1974 को चमोली के रेणी गांव में हुई, जब गोरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाएं पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए उनसे चिपक गई थी। इस आंदोलन का मकसद व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था। चमोली से शुरू हुआ यह आंदोलन एक दशक के भीतर पूरे उत्तराखंड में फैल गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिपको आंदोलन की वर्षगांठ पर वनों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए महान आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए गढ़वाल व टिहरी सीट से भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कांग्रेस ने भी टिहरी सीट से नामांकन पत्र भरकर दावेदारी पेश की। हरिद्वार लोकसभा सीट से भावना पांडे ने बसपा छोड़ने के बाद पार्टी ने मौलाना जमील अहमद काजमी को प्रत्याशी घोषित किया। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है और केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।